आज है 13 नवंबर दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं सुशीला सिंह। अब से कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी करेंगे वेम्बले स्टेडियम में लोगों को संबोधित।
लास्ट टू वीक्स हम धड़ाधर रिहर्सल्स कर रहे हैं और यू नो ट्राई टू गेट ऑल आवर बिट्स एक्यूरेट एंड राइट। एक एक्ट है जो थीम सॉन्ग का है और इनमें ड्रमर्स भी हैं और इनमें बॉलीवुड डांसर्स।
स्टेडियम के अंदर स्वागत की तैयारी तो बाहर हो रहा है विरोध। कितनी अहम है मोदी की ब्रिटेन यात्रा, जानेंगे विश्लेषक मोहन गुरुस्वामी से। और एक राजनीतिक दल द्वारा शुरू गई इप्टा संस्था कैसे बन गई लोगों की संस्था।
मैं समझता हूँ ऐसा कोई दूसरा आंदोलन नहीं है रंगमंची ये जिसका इतना प्रभाव हिंदी रचनात्मकता पर पड़ा हो और रंगकर्म पर पड़ा हो।
लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। ब्रिटेन के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लंदन के वेम्बले स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। वेम्बले स्टेडियम में कार्यक्रम की जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्रिटेन की पूरी कैबिनेट के साथ वहां भारतीय मूल के लगभग 70,000 लोग मोदी को सुनने पहुंचेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से मुलाकात की। महारानी एलिजाबेथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया है। इराक में कुर्द बहुल इलाके में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण शहर सिंजर को कुर्द लड़ाकों ने चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ा लिया है। कुर्द नेता मसूद बारजानी ने कहा है कि इससे आईएस के कब्जे वाले शहर मोसूल की तरफ बढ़ने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पिछले साल इस्लामिक स्टेट ने सिंजर पर कब्जा करने के बाद अल्पसंख्यक यजीदी समुदाय के लोगों को बड़ी संख्या में बंधक बनाया था और हत्याएं की थी। कुर्द नेता मसूद बारजानी के मीडिया प्रवक्ता किफा महमूद करीम ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक जीत है। आईएसआईएस ने कुर्दिस्तान के लोगों को निशाना बनाने के लिए सिंजर पर कब्जा किया था और एरबिल, सुलेमानिया और दुकोह पर भी धावा बोलने की धमकी दी थी। पेशमर्गा की सेना को महीनों तक दिन रात प्रशिक्षण दिया गया। अमरीका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कैनेडा और यूरोपियन यूनियन की मदद से आज ये सैनिक सिंजर गए। सिंजर में यजीदियों को निशाना बनाया गया था, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए और मोसूल, अलराका और तल अफर के बाजारों में इन्हें बेच दिया गया। सिंजर को छुड़ाना एक ऐतिहासिक पल है। ये थे किफा महमूद करीम के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी में पुलिस ने कहा है कि बेवेरिया प्रांत में एक अपार्टमेंट से करीब 7 शिशुओं के शव मिले हैं। पुलिस के मुताबिक फोरेंसिक जांचकर्ता अभी और शिशुओं के शवों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शव चेक गणराज्य की सीमा के नजदीक वेलेनफेल्स शहर में मिले हैं। पुलिस अपार्टमेंट में पहले रह चुकी एक 45 साल की महिला से पूछताछ कर रही है। म्यांमार की विपक्षी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने देश के पहले स्वतंत्र चुनाव में संसद में बहुमत हासिल कर लिया है। ये चुनावी नतीजे एनएलडी नेता आंग सान सूची के हिरासत से रिहा होने के 5 साल पूरे होने के मौके पर आए हैं। बहुमत हासिल करने के बाद एनएलडी म्यांमार में नई सरकार बनाने और राष्ट्रपति चुनने की स्थिति में आ गई है और इसी के साथ म्यांमार में सेना का सालों पुराना शासन खत्म हो जाएगा। हालांकि आंग सान सूची के राष्ट्रपति बनने पर संवैधानिक तौर पर रोक लगी हुई है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन दौरे से। नरेंद्र मोदी वेम्बले स्टेडियम में ब्रितानी नागरिकों और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। ये माना जा रहा है कि ब्रिटेन की पूरी कैबिनेट के साथ वहां भारतीय मूल के लगभग 70,000 लोग मोदी को सुनने आएंगे। कईयों का मानना है कि ये ब्रिटेन की जमीन पर भारतीयों के लिए शो होगा। सीधे चलते हैं वेम्बले स्टेडियम जहाँ हमारे सहयोगी ब्रजेश उपाध्याय मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर में ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। किस तरह की तैयारी है ब्रजेश, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
से कुछ ही लगभग 1.25 घंटे में रंगारंग कार्यक्रम शुरू होने वाला है। आप पीछे से बैकग्राउंड में आपको आवाज को सुनाई दे रही होगी संगीत की रिहर्सल की। लगभग 800 कलाकार तैयार हो रहे हैं तरह तरह के संगीत और नृत्य के कार्यक्रम लेकर। एक विशालकाय रंगोली से वेम्बली के उस मैदान को सजाया गया है जहां आमतौर पर फुटबॉल और रग्बी के मैचेस होते हैं। और ये जो रंगोली है एक भारत के भारतीय रंगों में है, दूसरा ब्रितानी रंगों में है। भारत से रॉयल बैले से भारतीय पॉप सिंगर्स और लंदन फिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के कलाकार भी इसमें शामिल हो रहे हैं। मौसम का डर ज़रूर सता रहा है क्योंकि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई, अभी वैसे धूप निकल आई है क्योंकि आयोजकों को लग रहा है कि इतना बड़ा शो पर पानी ना फिर जाए, इतनी मेहनत की है उन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी को अब से करीब 3 घंटे के बाद यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। उनकी पत्नी समांथा कैमरन भी होंगी वहाँ और वो साड़ी पहनकर वहाँ पर आ रही हैं भारतीय परिधान में। प्रधानमंत्री हिंदी में बोलेंगे या अंग्रेजी में ये अभी भी स्पष्ट नहीं है। और अंदाज़ा है जैसा कि आपने कहा कि 50,000 से ज़्यादा लोग जुट सकते हैं यहाँ पर। और अब से कुछ ही देर पहले जैसा मैंने कहा कि तैयारियां जो चल रही हैं, जहां वहां गया मैं तो मेरी मुलाकात हुई कि एक बहुत बड़े परफॉर्मेंस को जो कोरियोग्राफ कर रही हैं यहीं के रहने वाली ऐश ओबेरॉय, उनसे मैंने बात की। सुनिए इस बातचीत को।
मेरा नाम ऐश ओबेरॉय है।
कब से डांस की तैयारी चल रही है?
काफ़ी महीने से चल रहा है, लेकिन फॉर द लास्ट 2 वीक्स हम धरा धर रिहर्सल्स कर रहे हैं और यू नो ट्राई टू गेट ऑल आवर थिंग्स ऑल आवर बिट्स एक्यूरेट एंड राइट।
और ये लोग जो डांस कर रहे हैं इसमें ये लोग हैं कौन?
अच्छा, ये बेसिकली हम एक एक्ट है जो थीम सॉन्ग का है और इनमें ड्रमर्स भी है और इनमें बॉलीवुड डांसर्स भी है। मेरा स्कूल है सपने और ड्रमर्स जो है उनका परफॉर्मेंस भी है। सो जो सेलिब्रिटी आर्टिस्ट परफॉर्म कर रही है उनके लिए, उनके साथ हम ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं।
और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या सोचती हैं?
बस आई थिंक हमारे लिए द फैक्ट कि वो यहाँ आ रहे हैं इज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमारा कल्चर जो इंडिया का है उनके सामने ऑब्वियसली ये प्रेजेंट हो रहा है और हम उनके साथ ये सेलिब्रेशन हो रहा है।
तो ये थी कोरियोग्राफर ऐश ओबेरॉय और जिस तरह की आवाज़ें हमें ब्रजेश उपाध्याय से सुनाई दे रही हैं, काफ़ी रंगारंग माहौल है, काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है, काफ़ी तैयारी चल रही है ब्रजेश।
जी हाँ बिल्कुल सुशीला, काफ़ी लोग जमा हो गए हैं, स्टेडियम में आने शुरू हो गए हैं। वॉलंटियर्स की कतार जो है वो तो सुबह लगभग 8-9 बजे से ही लगनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब लोग स्टेडियम के अंदर आना शुरू हो गए। काफ़ी जगह भर गई हैं लेकिन अभी भी बहुत जगह खाली है। और हम जब कोरियोग्राफर की बात कर रहे थे तो वहीं पर बगल में मैंने देखा कि तरह तरह के लड़के लड़कियाँ तैयार हो रहे थे, सेल्फी ले रहे थे और भारतीय परिधानों में वो जो नृत्य गीत के लिए वो तैयार हो रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं मोहिनी पटेल जो एक डांस करेंगी यहाँ पर, उनसे मेरी बात हुई, वो सुनिए।
मेरा नाम मोहिनी पटेल है।
कब से सीख रही हैं ये डांस?
लगभग 3 वीक से।
और क्या, क्या डांस
3 हफ्ते से
जा रही है आप?
हम लोग आज नगाड़ा संग ढोल बाजे रामलीला फिल्म से है उस पर डांस कर रहे हैं आज।
और कितना टाइम लगा है इसको पूरा सारा कुछ को एकजुट करने में?
हम लोग 3 हफ्ते से रोज 5 घंटे रिहर्सल्स कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी के सामने परफॉर्म कर रही हैं, आपको क्या कैसा लग रहा है उस पर?
बहुत उत्सुक है स्टेज पर डांस करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए इतने 60-70 हज़ार लोगों के सामने, और बस बहुत एक्साइटेड है।
प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर आ रहे हैं उनके सामने स्टेज पर जो डांस कर रही है, आपके लिए क्या मायने रखता है वो?
बहुत खुशी की बात है, इतना अच्छा चांस मिला है हमें प्राइम मिनिस्टर्स के सामने, प्रधानमंत्री के सामने परफॉर्म करने के लिए, इतने लोगों के सामने और ब्रिटिश पीपल के सामने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत खुशी है कि हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं आज।
तो सुशीला सुना आपने कि किस तरह का जोश है जो यहाँ कलाकार प्रदर्शन कर रहे हैं और बस अब उन्हें भी बस घड़ी का इंतज़ार है, कुछ देर में वो स्टेज पर उतरेंगे।
जी ब्रजेश, आप नज़र बनाए रखिए और धन्यवाद आंखों देखा हाल देने के लिए, आपसे घटना चक्र में अपडेट लेने के लिए दोबारा आएंगे। और अब सीधे चलते हैं वेम्बले स्टेडियम के बाहर जहाँ BBC संवाददाता ज़ुबैर अहमद मौजूद हैं। स्टेडियम के बाहर एक समूह मोदी की यात्रा का विरोध कर रहा है, कौन है ये लोग और इनकी क्या मांग है ज़ुबैर?
अभी जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ज्यादातर उनमें सिख समुदाय के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि 1984 में जो दंगे हुए थे जिसमें दिल्ली में 3000 के करीब लोग मारे गए थे, उनके जो लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो सिखों को बंद किया गया है पंजाब की जेलों में उनको रिहा करना चाहिए। तो थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक ऐसा माहौल मैंने देखा कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके उनसे जो मोदी समर्थक हैं आपस में इनकी बहस भी हुई काफी देर तक, कुछ अच्छे माहौल में भी हुई, कुछ गर्मा गर्मी भी हो गई, लेकिन अब पुलिस ने आके उन्हें अलग अलग कर दिया है। तो जो प्रोटेस्टर्स हैं थोड़ी दूर पे चले गए हैं, वो बहुत छोटी सी संख्या में है, जो यहाँ पर काफी हजारों की संख्या में वो लोग हैं जो स्टेडियम के अंदर जा रहे हैं, मोदी के समर्थक हैं। जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनकी संख्या बहुत कम है
जी। और क्या ये लोग मोदी से मिलना भी चाहते हैं, इनका क्या कहना है?
देखिए सिखों का एक ग्रुप तो मिला था मोदी से और उसके बाद उनकी बातचीत हुई है और मैंने भी सिख लीडरों से जो बात की थी उनका ये कहना था कि वो उनसे बातचीत करना चाहते हैं, बल्कि भारत सरकार से उनकी कई महीनों से बातचीत चल भी रही है और उनके कुछ मांगे हैं जो उन्होंने सामने रखी हैं मिस्टर मोदी के। तो अब क्या निकल के नतीजा है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बातचीत जारी है
जी। ये थे वेमले स्टूडियो से हमारे संवाददाता जुबैर अहमद। जुबैर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पास भी घटना चक्र में वापस लौटेंगे अपडेट के लिए। नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान माना जा रहा है कि राजनीतिक आर्थिक विषयों के अलावा कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत हो रही है। दोनों देशों के रिश्ते काफी अहम है क्योंकि ब्रिटेन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। मैंने मोदी की इस यात्रा की अहमियत पर बात की आर्थिक मामलों के जानकार मोहन गुरुस्वामी से।
हर यात्रा अहम होता है, पर्टिकुलरली जब आप निवेश के लिए जा रहे हैं, मगर देखिए ब्रिटेन का जो स्टैंडिंग है वर्ल्ड ऑर्डर में छोटा ही है, तो वहां से इन्वेस्टमेंट आना हिंदुस्तान में ज्यादा मैं उम्मीद नहीं रखता, मगर आज जो ब्रिटेन में जो इन्वेस्टमेंट होता है ज्यादातर भारत से होता है, तो भारत नंबर 3 प्लेस पे है, वहां पे अमेरिका और चाइना के बाद में भारत की इन्वेस्टमेंट ब्रिटेन में नंबर 3 पोजीशन पे, तो नेट एक्सपोर्ट होता है कैपिटल यहाँ, तो उसको उन्होंने रोकना चाहिए। उसके अलावा वहां से कुछ जो आता है उससे 215 टाइम्स ज्यादा हमारा यहाँ से कैपिटल जाता है। मेरे ख्याल में अगर वो यहाँ पे ज्यादा दिन रहे और यहाँ पे कुछ हमारे हालात को दुरुस्त करें और यहाँ से फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो हो रहा है उसको अगर रोक सके तो बिल्कुल वो FDI तरह ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कैपिटल जो है ऐसा बैठता नहीं तो कुछ ना कुछ काम में लग जाता है, तो उसको रोकना चाहिए। उसके बजाय वो जा रहे हैं यहाँ पे ज्यादातर हर जगह वो हथियार खरीदने की बात होती है, तो मेरे ख्याल में कुछ इनकी जो डिप्लोमेसी है मेरे ख्याल में कुछ ठीक से इसका सोच विचार नहीं है इसके पीछे, तो मैं ज्यादा उम्मीद नहीं रखता इस विजिट पे। जो आता है ब्रिटेन से इन्वेस्टमेंट ट्रेडिशनल इन्वेस्टर है, ट्रेडिशनल पार्टनर्स है, वो तो आते रहेगा, इनके जाने ना जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन जिस तरह से मोदी विदेश यात्रा कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो वहां से विदेशी निवेश लेकर आएंगे, आपको क्या लगता है कि क्या जितनी उन्होंने यात्रा की है उसके मुताबिक विदेशी निवेश लाने में वो कामयाब रहे हैं?
मेरे ख्याल में ये कुछ गलत फहमी में है, ज्यादा से ज्यादा जो विदेशी निवेश जो आता है हिंदुस्तान में उसमें से 70-60% भारतीय निवेश होता है, जो बाहर जाके रुका हुआ पैसा वो वापस आता है। आप देखिए अगर सबसे बड़ा इन्वेस्टर आप देखिए हिंदुस्तान में सिंगापुर और मॉरिशियस से होता है, लगभग 50% वहां से आता है, ये सब राउंड ट्रिपिंग का पैसा है। तो अगर वो यहाँ से फ्लाइट ऑफ कैपिटल को रोक सकते हैं तो बड़ी अच्छी चीज है, जो निवेश अगर यहाँ पे दुरुस्त सुधार होता है रिफॉर्म में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो ज्यादा यहाँ से हिंदुस्तानी निवेश लगता है। हिंदुस्तानी निवेश हिंदुस्तान में हो या बाहर हो तो एक ही बात है ना, तो वापस जो आ रहा है, तो हमको सिर्फ निवेश की ओर दृष्टि रखनी चाहिए। विदेशी निवेश कोई मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसे तो बहुत कम उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, ना यहाँ पे ना चीन में, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कैपिटल जो आता है वो लोकल होता है
जी। वहीं देश में जो है एक तरह से बहस चल रही है कि देश में कथित तौर पर असहिष्णुता जो है इनटॉलरेंस बढ़ा है, लेकिन भारत में तो खूब चर्चा होती है लेकिन जब मोदी बाहर जाते हैं तो वो सहिष्णुता की बात होने लग जाती है, ऐसा क्यों?
मैं नहीं समझता कि मोदी जी कुछ खुद इनटॉलरेंस प्रमोट करते हैं हिंदुस्तान में या बाहर, वो होता है जो ये नॉर्मल लेवल की जो ये संघ वाले जो है जो गड़बड़ करते हैं, ये बातें जो उठाते हैं ये पहले से भी, जरा सरकार में आने से जरा और उनको जरा आवाज लोग सुनते हैं उनको, मेरे ख्याल में ये एक माइनॉरिटी व्यू है हिंदुस्तान में, इसको हम उस दृष्टि से पॉलिटिकली फाइट कर सकते हैं और आसानी से फाइट कर रहे हैं। मोदी जी जाते हैं तो यहाँ पे भी उनके जो डोमेस्टिक ओपोनेंट्स हैं उनकी थोड़ा बहुत प्रोपेगेंडा हो जाता है और वो कुछ ज्यादा कुछ कहते नहीं इनको, जो अगर ये दादरी में जो हाल खांड हुआ और दूसरी जगह जो हुआ तो मोदी जी कुछ कहा नहीं, तो उसे एक ऐसे एनकरेजमेंट मिले जैसा भी होता है कभी कभी, तो उसमें मेरे ख्याल में उनको एक एक्टिव पॉलिसी लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनको खुल के बोलना चाहिए और अपना जो उनका रुख है उस पर स्पष्ट कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री है देश के, एक बड़ी पार्टी के नेता है, तो असर तो होगा।
ये थे आर्थिक मामलों के जानकार मोहन गुरुस्वामी। अब एक ऐसी संस्था की दास्तां जिसे शुरू किया था एक राजनीतिक दल ने, लेकिन जिसका असर किसी भी राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता से परे जाकर देश के जमीनी लोगों तक पहुंचा। आज़ादी से पहले इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा देश की पहली ऐसी संस्था थी जिसे कला और संस्कृति को आम मजदूर और किसानों के सरोकारों से जोड़ा और साबित कर दिया कि साहित्य, संगीत और कला अभिजात्य शौक नहीं बल्कि एक समाज को जागरूक करने का, सत्ता के खिलाफ विरोध जताने का अचूक माध्यम है। एक ऐसी संस्था से देश भर के महान संस्कृति कर्मी जुड़े और जिसके बिखरने पर मशहूर रंग पर कर्मी हबीब तनवीर ने कहा था, हैरत होती है ये देखकर कि क्या पाया था इप्टा ने और कैसे अब खत्म हो गया चुटकियों में। आज की विवेचना में सुनिए इप्टा की कहानी प्रगति सक्सेना से।
चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी, भारत माता गुलामी की जंजीरों में बिलख रही थी। वही
1943 बंगाल का अकाल, अनाज की कमी नहीं लेकिन लोगों को मिला नहीं, 30 लाख लोग भूख से मारे गए लेकिन अंग्रेज सरकार के कान पर जूं तक न रेंगी। जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल से मदद मांगी गई कि बंगाल में लोग भूखे मर रहे हैं तो उन्होंने जवाब भेजा, अच्छा तो गांधी अब तक क्यों नहीं मरे। ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी ने एक ऐसी संस्था की परिकल्पना की जो देश भर में न सिर्फ आज़ादी की अलख जगाए बल्कि सामाजिक बुराइयों से भी लोहा ले। 25 मई 1943 को मुंबई के मारवाड़ी हॉल में प्रोफेसर हीरेन मुखर्जी की अध्यक्षता में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा की स्थापना हुई। हिंदी के वरिष्ठ लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी बताते हैं,
इसका प्रतीक चिन्ह है एक नगाड़ा वादक और ये प्रतीक चिन्ह बहुत बड़े भारत के चित्रकार चित्ता प्रसाद का बनाया हुआ रेखा चित्र है।
एक नया जोश भर देता है।
भाई मेरी एक शर्त है।
वो क्या? वो क्या?
मैं अकेले नहीं गाऊंगा, तुम सबको गाना पड़ेगा मेरे साथ।
मुंबई उस वक्त इन गतिविधियों का केंद्र था, लेकिन बंगाल, पंजाब, दिल्ली, मालाबार, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी प्रांतीय समितियां बनी।
इप्टा जैसी संस्था की स्थापना की प्रेरणा प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक होमी भाभा ने दी थी। आप इसकी लोकप्रियता की कल्पना इसी बात से कर सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने और सरोजिनी नायडू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों ने इसमें शुभकामना संदेश अपने भेजे थे। तो इप्टा की शुरुआत वस्तुतः नए भारत के जागरण का एक प्रतीक था।
इससे पहले 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो चुकी थी। प्रगतिशील लेखक संघ यानी PWA और इप्टा के रचनाकारों में बहुत नजदीकी रिश्ते रहे। PWA के महासचिव प्रोफेसर अली जावेद हैं।
दोनों में आपसी संबंध, आपसी तालमेल जो है वो बहुत गहरा था। बलराज सानी, भीषम सानी, AK हंगल, ये सारे लोग जो है उधर जो थिएटर पर्सनालिटी मुख्तलिफ जबानों में थे, जैसे विजन भट्टाचार्य, पल दत्त, ये सब उस मोमेंट से ही अल्टीमेटली जुड़े। और बंबई में पृथ्वीराज कपूर जैसी पर्सनालिटी जो है, ये लोग सब इप्टा के साथ जुड़ करके, इसीलिए आजादी के दौरान जब इप्टा और PWA की टीम निकलती थी तो जो राइटर्स थे PWA के उनके गाने होते थे और इप्टा की टीम जो है उन्हें परफॉर्म किया करती थी।
ऐसी क्या खूबी थी इप्टा और PWA में कि एक बेहद कठिन राजनीतिक सामाजिक दौर में भारत की रचनात्मकता अपने उरूज पर आई? इस माहौल को तैयार करने में अहम रोल अदा किया था कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन महासचिव पूरनचंद जोशी ने। मशहूर लेखक भीष्म साहनी ने अपने संस्मरण आज के अतीत में PC जोशी से पहली मुलाकात का जिक्र किया है।
वे लापरवाही से कपड़े पहने हुए थे, पैरों में पुरानी चप्पल और तंबाकू खा रहे थे। मैंने खुद से कहा, बेशक ये वो पीसी जोशी नहीं जिनका नाम हर एक की जुबान पर है, लेकिन जब उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा तो उनकी आंखों की स्नेहपूर्ण चमक और एक चमकीली मुस्कान ने मेरे सारे शक को दूर कर दिया।
विश्वनाथ त्रिपाठी बताते हैं,
लोगों के बीच में वो एक मिथक पुरुष की तरीके से हैं। जब उनके बारे में लोग बात करते हैं तो लोग ऐसे बात करते हैं जैसे वो अपने किसी मित्र के, अपने परिवार के सदस्य के बारे में बात कर रहे हों। उनका व्यक्तित्व तो और राजनीतिक नेताओं से शायद अलग है और विशिष्ट है। वो बहुत व्यक्तिगत दिलचस्पी लेते थे, बहुत जैसे इतने बड़े नेता और इतने व्यस्त नेता होने के बावजूद वो जिस व्यक्ति से मिलते थे तो उसकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उसकी जो व्यक्तिगत जिंदगी है, यानी उसके जो सुख हैं, उसके जो दुख हैं, उन सब में जैसे वो शामिल होते थे और सहायक होते थे।
इप्टा में एक बराबरी का माहौल था, जहां कैफी जैसे लोगों को पीसी जोशी अपने साथ लाए, वहीं बलराज साहनी जैसे अभिजात वर्ग के लोग सुविधा संपन्न जिंदगी को छोड़कर इस मुहिम में शामिल हुए। सबसे बड़ी बात ये कि इस संस्था ने आजादी से पहले वाले भारत में भी महिलाओं को बराबरी की जगह दी। शौकत आजमी और दमयंती साहनी जैसी कुछ महिलाएं अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली तो जमीनी स्तर पर कई महिलाएं थीं जिन्होंने परिवार के जबरदस्त विरोध के बावजूद इप्टा नहीं छोड़ा और देश के छोटे छोटे गांवों में जाकर काम किया। मुंबई इप्टा की संचालक शैली सेथ्यू कहती हैं,
इप्टा की जो नींव डाली गई थी वो एक महिला द्वारा डाली गई थी जिनका नाम है अनिल डिसिल्वा। वो श्रीलंका की थी। एम्पावरमेंट की अगर बात है तो इप्टा में शुरू से औरतों के लिए जगह रही है और एक बराबर का उनको पद दिया गया है।
जय माता दी।
आज भी इप्टा में हर उम्र की महिलाएं सक्रिय हैं। जरा कल्पना कीजिए कि एक गली के नुक्कड़ पर बैठे कुछ लोग, सुबह की चाय पर शुरू हो जाती है बहस कि अंग्रेज किस तरह की नीतियां अपना रहे हैं, क्या कांग्रेस उनका मुकाबला कर पाएगी, क्या हुकूमत किसानों को उनका हक देगी। बहस जोर पकड़ती है और पुलिस के दो बाशिंदे बीच बचाव करते हैं, धमकाते हैं, अंग्रेज सरकार की पैरवी करते हैं। शोरगुल बढ़ता जाता है। इतने में असल पुलिस आ जाती है। जो पहले रुआब जमा रहे थे भाग खड़े होते हैं। तब आसपास इकट्ठा हुई भीड़ को एहसास होता है कि अरे ये तो नाटक था। इस तरह भारत में शुरुआत हुई नुक्कड़ नाटक की। शैली सेथियो कहती हैं,
जो शुरू का जमाना था तो उसमें कई लोगों को काफी कुछ झेलना पड़ा, जेल भी गए कई लोग। लेकिन अगर आप देखें थिएटर हिस्ट्री में इंडिया की, तो नुक्कड़ नाटक का पूरा फॉर्म जो है वो इप्टा मूवमेंट से ही निकल कर आया है।
इस तरह के नाटकों का मंचन संवादों के साथ संगीत का इस्तेमाल कर किसी भी खुली जगह में किया जा सकता था। तमाशा, जात्रा, नौटंकी, पांडवानी जैसी तमाम लोक शैलियों में आधुनिक विषयों पर लेकर नाटक लिखे और खेले जाने लगे, जिनमें कम्युनिस्ट पार्टी का रुख, हुकूमत का विरोध और आजादी का आह्वान मुख्य कथानक थे।
यही माटी में जीन हमरो, यही में मरन है भैया।
इप्टा ने न सिर्फ समाज के आखिरी आदमी को नाटकों और फिल्मों का केंद्रीय पात्र बनाया बल्कि संगीत और संवादों को भी पैना किया।
कैसे हरे भरे दरख्त कट रहे हैं इस हवा में।
बड़ी गर्म हवा है मियां, बड़ी गर्म, जो उखड़ा नहीं सूख जावेगा मियां।
हिंदी के वरिष्ठ आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी कहते हैं,
मैं समझता हूँ ऐसा कोई दूसरा आंदोलन नहीं है रंगमंचीय जिसका इतना प्रभाव हिंदी रचनात्मकता पर पड़ा हो और रंगकर्म पर पड़ा हो जितना कि इप्टा का पड़ा है।
धरती के लाल नाम की फिल्म से ख्वाजा अहमद अब्बास ने फिल्मों के कथानकों को भी आम मजदूर और किसान की समस्याओं की तरफ मोड़ा। फ्रेंच सिनेमा में एक नई शैली नियो रियलिज्म यानी नव यथार्थवाद का आगाज हो चुका था। इसी तरह का सिनेमा इप्टा से जुड़े फिल्मकारों ने भी रचा और इस तरह कुछ कालजयी फिल्में बनी, जिनमें से कुछ हैं दो बीघा जमीन, नीचा नगर, जागते रहो, बंदिनी, सुजाता, अजांत्रिक और गर्म हवा। इससे भी ज्यादा अहम बात यह कि इस मूवमेंट ने भावी फिल्मकारों और फिल्म संगीतकारों की एक पूरी खेप को प्रभावित किया।
सबसे बड़ा शायद जो इप्टा का जौहर दिखाई पड़ता था वो खासतौर फिल्मों के क्षेत्र में था। एक समय ऐसा था जबकि शायद ही ऐसी कोई मशहूर फिल्मी हस्ती हो जिसका संबंध इप्टा से न रहा हो, और केवल हिंदी सिनेमा में नहीं, केवल हिंदी कविता में नहीं या हिंदी कथा साहित्य में नहीं, बल्कि शायद ही कोई भारतीय भाषा हो जिसकी प्रत्येक सांस्कृतिक गद्य में और क्षेत्र में इप्टा के लोगों का प्रभाव न हो।
अभिनेता परीक्षित साहनी अपने पिता बलराज साहनी को याद करते हुए बताते हैं कि उनके लिए अभिनय का मतलब था उस पर यकीन करना।
जब भी इप्टा के किसी वो थिएटर की रिहर्सल के वक्त अगर कोई बंदा एबसेंट हो या गायब हो जाए तो वो कहते थे परीक्षित को बुलाओ भाई, इसको लगाओ मूछ और बुलाओ स्टेज पे। तो मैं एज ए डबल बड़ा काम किया है, हकीकत पसंद यथार्थवादी एक्टर थे वो, कि जो चीज भी करो वो सोच समझ कर और पूरी तरह से जज्ब करके करो। वो कहा करते थे एक्टिंग इज नॉट एक्टिंग, एक्टिंग इज बिलीविंग, यकीन करो, विश्वास करो कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। मैजिक सर्कल वो कहते थे कि एक जादुई एक दायरा बनाओ अपने आसपास।
संगीत को भी इप्टा ने अपनी इस कलात्मक लड़ाई का अचूक हथियार बनाया। आज जब हम इस बहस में अटके हैं कि लेखकों को सत्ता का विरोध करना चाहिए या नहीं, पुरस्कार लौटाने चाहिए या नहीं, तो जरूरत एक बार फिर पीछे लौटने की है, जब कलाकर्मियों, संगीतकारों और गीतकारों ने सत्ता के विरोध में गीत लिखे, बनाए और गाए। हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, शैलेंद्र के ऐसे विरोधपूर्ण गीतों और सलिल चौधरी की धुनों ने आगे चलकर मजदूर संगठनों के लिए नारों का काम किया। वरिष्ठ रंगकर्मी लोकेंद्र त्रिवेदी कहते हैं,
ये प्रोवोकिंग म्यूजिक था जो एक तरह से लोगों को उत्साह से भर देता था और अपने देश की आजादी के लिए वो मर मिटने के लिए तैयार होते थे। ज्यादातर कंपोजिशन जो थी या तो फोक म्यूजिक का इस्तेमाल किया या फिर उस जमाने में जो नया नया विदेशी संगीत आ रहा था उसका इस्तेमाल किया, खासतौर पर बीट के अंदर।
इस तरह से इस संगीत की ताल पूरी तरह पश्चिमी होती और धुन विशुद्ध भारतीय। इस गुर को आगे चलकर हिंदी के बहुत से मशहूर संगीतकारों ने भी अपनाया। कोरस यानी सामूहिक गान को मुख्य धारा का संगीत बनाने में इप्टा की अहम भूमिका रही। लेकिन अफसोस कि आजादी और बंटवारे के बाद ये संस्था बिखर गई। मशहूर लेखिका राज थापर ने अपनी किताब ऑल दोज डेज में जिक्र किया है कि कम्युनिस्ट पार्टी में नेहरू को लेकर गंभीर मतभेद उभरने लगे। नेहरू का समर्थन करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोग पीसी जोशी की हत्या करने पर आमादा हो गए। पीसी जोशी को पार्टी से निकाल दिया गया। आजादी के बाद सरकार ने भी इप्टा की निगरानी शुरू कर दी। इसके नाटकों को प्रतिबंधित किया गया। पार्टी जो थोड़ी बहुत आर्थिक मदद इप्टा को देती थी वो बंद कर दी गई।
ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं।
80 के दशक में युवा रंगकर्मी एक बार फिर इसकी तरफ आकर्षित हुए। आज इप्टा की धार और तेवर नरम हुए हैं।
इप्टा का मूवमेंट कमजोर हुआ है, लेकिन ओवरऑल सामाजिक सतह पर देखिए कि लोगों का पॉलिटिकल मूवमेंट भी कमजोर हुआ है, कल्चरल मूवमेंट भी कमजोर हुआ है। कंज्यूमरिज्म ने एक तरह से डायरेक्शनलेसनेस पूरे समाज में पैदा कर दी है।
लेकिन अब भी ये संस्था जीवंत है और पूरे देश में करीब 20,000 इप्टा सदस्य अपने अपने स्तर पर बिना किसी मशहूरी की इच्छा के काम कर रहे हैं। समांतर सिनेमा और आपातकाल के विरोध का थिएटर हो या आज का नीश सिनेमा, जब भी विरोध के स्वर उठते हैं उनमें इप्टा के जज्बे की पदचाप सुनी जा सकती है। ये वो आंदोलन था जो फुटपाथ पर थक कर सोते मजदूर से लेकर जमीन को उम्मीद से ताकती सूखी आंखों और हर छोटे बड़े घर के तकिए पर सलवटे डालते सपनों के नाम था, है और रहेगा, जब तक उम्मीद है, सपने हैं और हर बार गिर कर उठ खड़े होने का इरादा भी।
आज के नाम और आज के हम के नाम, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द का अंजुमन जो मेरा देश है।
आपको इप्टा पर आज की विवेचना कैसी लगी हमें जरूर लिखेगा। और अब समय है मुख्य समाचारों का।
बीबीसी समाचार। ब्रिटेन के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लंदन के वेम्बले स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। वेम्बले स्टेडियम में कार्यक्रम की जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। लगभग 70,000 लोगों के आने की उम्मीद है। इराक में कुर्द बहुल इलाके में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण शहर सिंजर को कुर्द लड़ाकों ने चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ा लिया है। जर्मनी में पुलिस ने कहा है कि बेवेरिया प्रांत में एक अपार्टमेंट से करीब 7 शिशुओं के शव बरामद हुए हैं। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी के साथ दिन भर में आज बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में दोबारा होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।